Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में छठे स्कंद के 15वें अध्याय पर चर्चा है, इसके एक श्लोक को दोहराएंगे। यथा प्रायान्ति सम्यान्ति स्त्रोतु वेगेन बालुकः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा प्रयान्ति सम्यान्ति स्त्रोतु वेगेन बालुकः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा प्रयान्ति सम्यान्ति स्त्रोतु वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। विलग होते सम्यान्ति पास पास आते हैं स्त्रोत वेगेन लहरों के वेग से बालुकः बालू के सूक्ष्म कण संयुज्यन्ते परस्पर जुड़ते हैं वियुज्यन्ते पृथक होते हैं तथा उसी प्रकार कालेन काल के द्वारा देहिनः देहधारी जीवात्माएं अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा हे राजन जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं तो कभी बिछुड़ जाती हैं। तात्पर्य बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। यह देह भौतिक है किंतु देह के भीतर आत्मा है, यही आत्मज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे यह ज्ञात नहीं हो पाता कि देह पदार्थ स्वरूप है। ये देहें बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती हैं और पुनः काल वेग से पृथक हो जाती हैं। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न नहीं उठता। अतः भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश यही है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह में क्रम से बालपन यौवन और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है उसी प्रकार मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हम देह नहीं हैं, वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी वास्तविक रुचि इस सामान्य तथ्य को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल सामाजिक कल्याण कार्य चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों ना बना लें, यह कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए भौतिक जीवन को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। कृपया सभी साथ में दोहराएं।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कंठयोस्फुरा।
हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि कैसे बहुत ज्यादा शोक महाराज चित्रकेतु कर रहे थे, इतना कि अपने पुत्र के शव के पास प्रायः उनका शव गिर गया था, ऐसा वर्णन है कि मृत पड़े हुए थे, इतना उनको शोक हुआ था। और अब इस अध्याय में उस शोक का निवारण कैसे होना चाहिए इसका वर्णन किया है। इस जगत में हर जीव दो ही चीजों में फंसा है, आकांक्षाएं और शोक। और जब इनसे परे हो जाता है तो भगवान की भक्ति या सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। जब तक हमारे जीवन में आकांक्षाएं बनी हुई हैं, भौतिक आकांक्षाएं, और जब तक हम भौतिक चीजों के लिए, भौतिक देहों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए शोक करते रहते हैं, हम भगवान को समझ नहीं सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और तब तक हमारा ये भक्ति का मार्ग भी हमें पूर्णता प्राप्त नहीं करा सकता। भक्ति में भी अगर हमें प्रगति करनी है तो इन दो चीजों से परे जाना ही है। इसीलिए अर्जुन को पहला उपदेश, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, भगवान ने यही दिया। अर्जुन भी शोक कर रहा था और यहाँ पर महाराज चित्रकेतु शोक कर रहे हैं। स्मरण होगा आपको, पिछले अध्यायों में हम लोगों ने वृत्रासुर की कथा को कहा और वृत्रासुर के इतिहास को कहते हुए अब चित्रकेतु की कथा चल रही है। वैसे तो महान भक्त हैं चित्रकेतु, लेकिन शोक कर रहे हैं। इनका ये जो उदाहरण दिया गया है हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज चित्रकेतु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त होते हुए उन्होंने शोक प्रकट किया और किस प्रकार उनके शोक का निवारण हुआ ये इस अध्याय में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये छोटा सा अध्याय है 28 श्लोकों का, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि अगर इसके निर्देशों को हम जीवन में उतार लें तो निश्चित भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन निर्देशों को सुनने के बाद 7 दिनों के अंदर महाराज चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हुए। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। नारद मुनि कहते हैं इस अध्याय के अंत में उनको मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, इस भाव में रहकर जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में रहकर 7 दिन के अंदर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हम सब साधकों के लिए है, क्योंकि हम भी भगवान के भक्त कहलाते हैं, हम भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर इस सच्चे ज्ञान में अपने आप को स्थित नहीं करेंगे, शोक में आसक्ति में पड़े रहेंगे, तो फिर ये केवल समय की बर्बादी होगी। न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो यहां जब अंगीरा मुनि और नारद मुनि आए, पिछले अध्याय के अंत में कहा गया था कि अंगीरा मुनि जान गए कि कैसे राजा शोक कर रहा है, तो नारद मुनि को साथ में लेकर आए। तो अब पहले 7 श्लोकों में वो उपदेश देते हैं कि किस प्रकार जो शोक कर रहे थे राजा उनको वो उपदेश देते हैं। तो उपदेश का प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, वो राजा से पूछते हैं कि आप शोक कर रहे हो इसलिए कि ये आपका पुत्र है, अब ये बताइए कि इस मृत शरीर से आपका क्या संबंध है। धीरे धीरे वो राजा को ज्ञान देंगे, बहुत सुंदर ये उपदेश है, एक के बाद एक अगले सीढ़ी चढ़ाते जाते हैं। तो राजा से पूछते क्या संबंध है तुम्हारा जिस शरीर के लिए रो रहे हो, इससे क्या संबंध, क्या ये संबंध पूर्व काल में था अर्थात इस जन्म के पहले था, क्या ये संबंध आगे होगा, और क्या अभी भी ये सच्चा संबंध है, क्योंकि सच्चा संबंध हो तो उसे टूटना नहीं चाहिए। जो चीज सच्ची है, सच्ची चीज किसे कहते हैं, जो शाश्वत है, जो समाप्त ना हो वो सही चीज है, जो समाप्त हो जाए वो तो केवल अशाश्वत चीज है। तो इसीलिए राजा से पूछते हैं कि क्या ये संबंध पहले था, क्या आगे होगा, क्या अभी भी सही में संबंध है तुम्हारा इससे, क्यों शोक कर रहे हो इतना। तो मान लीजिए कि राजा कहें, ये वैसे तो उनके उपदेश हैं एक के बाद एक, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। कि अगर राजा ने सुना कि अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, पहले नहीं था, आगे भी नहीं है, तो राजा प्रश्न कर ले कि हम साथ में तो रह रहे थे ना, शोक करना चाहिए ना, जैसे अर्जुन ने भी कहा था कि ठीक है कुछ तो संबंध है, चले जाने का दुख तो होता है। तो राजा ने भी मानो कह दिया अरे साथ में तो रहा हमारे, क्योंकि कभी कभी साथ में पशु भी रह लेता है, कुत्ता भी रहता है, लोग घर में कुत्ता रखते हैं मर जाता है तो दुख होता है। तो मान लीजिए राजा ने ये कहा तो उसका उत्तर देते हुए ये श्लोक वो कहते हैं कि ये जो तुम साथ में रहने की बात कर रहे हो, जैसे नदी में बालू के कण, रेत के कण एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं थोड़े समय के लिए, फिर अलग हो जाते हैं, उनका क्या अस्तित्व है, उनकी क्या शाश्वतता है, वो सदैव साथ में नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं फिर अलग हो जाते हैं। ऐसे ही काल नाम की नदी है जिसमें हम सब हैं, थोड़े समय के लिए साथ में आते हैं। जैसे हम लोग नदी में देखते हैं कई बार घास के तिनके ऐसे नदी के बहाव में बहते रहते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं और थोड़े समय बाद अलग हो जाते हैं। जीवन यही है। नारद मुनि अंगिरा मुनि समझा रहे राजा को कि तुम जो ये कहना चाह रहे हो कि साथ में तो रहा, तो ये तो काल के प्रभाव से था। आज तुम इनके साथ हो, कल किसी और के साथ होगे, अगले जीवन में किसी और के साथ। इस चीज को समझना चाहिए। हम लोग जो संबंध स्थापित करते हैं ये संबंध शाश्वत नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए, हमारा थोड़ा समय कुछ वर्ष हो सकता है, एक जीवन हो सकता है। हमारे पिछले जन्म में कौन माता पिता थे, कौन पति पत्नी थे, कौन पुत्र इत्यादि थे, किसको पता है। उनसे भी हमने बड़ा प्रेम किया होगा, बड़ी सेवा की होगी, उनके लिए बड़े रोए होंगे हम लोग जब उनकी मृत्यु हुई होगी। आज वो कहां है। तो अंगिरा मुनि ये समझा रहे हैं कि बालू के कण के समान सब साथ में आते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। तो मानिए चित्रकेतु ने प्रश्न किया कि ठीक है, मान लिया हम साथ में आते हैं चले जाते हैं काल के प्रभाव से, लेकिन ये तो मेरे शरीर से जन्मा है, ये मेरा पुत्र था, मैंने इसको जन्म दिया, ऐसे नहीं कि कोई मित्र आकर मिला और चला गया। तो उसके लिए बहुत सुंदर बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जमीन में बहुत सारे बीज बोते हैं, लेकिन कुछ ही बीजों से पेड़ आते हैं, सब बीजों से पेड़ नहीं आते हैं। सारे बीजों में शक्ति है फिर भी नहीं आते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि एक पिता प्रयास करता है संतान को उत्पन्न करने का, जन्म देने का, लेकिन संतान का जन्म नहीं होता। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात समझाते हैं। वो क्यों है, प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों होता है कि पिता प्रयास करता है संतान हो, संतान नहीं होती। और कभी कभी जैसे कि आज के आधुनिक युग में आसुरी प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे का संग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपायों को करते हैं जिससे संतान ना हो, ऐसे कुछ उपाय का इस्तेमाल करते हैं कि आनंद तो लेते हैं लेकिन संतान ना हो, अर्थात जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसे में भी कभी कभी संतान हो जाती है, और फिर ऐसे आसुरी लोग जाकर गर्भपात कराते हैं। तो अर्थ क्या है, कुछ लोग संतान चाहते हैं उनको संतान होती नहीं, कुछ लोग संतान नहीं चाहते उनकी संतान हो जाती है। ये कैसे होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग इतना उपाय कर लेते हैं कि संतान ना हो लेकिन फिर भी संतान हो जाती, और कई लोग बड़ा प्रयास करते हैं संतान हो, संतान नहीं होती। तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि ये संतान होना या ना होना भगवान की इच्छा से होता है, जीव का कोई स्वतंत्र नियंत्रण नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में कही गई, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। इस चीज को जान लेना चाहिए। जब तक हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं भौतिक चेतना है, जब अधीन कर देते हैं भगवान के, ये आध्यात्मिक चेतना। तो कैसे पता चले क्या करना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में लिखा है क्या करना चाहिए। तो जो भगवद गीता में लिखा, जो शास्त्रों में लिखा, उसके अनुसार चलना, ये मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक है। स्वतंत्र नहीं रहना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है स्वतंत्रता की भावना है। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई पराधीन रहना नहीं चाहता है ना। भारत स्वतंत्र नहीं था तो बड़े संग्राम हुए, बड़े युद्ध हुए, लोगों ने अपने जीवन दिए, किस लिए, स्वतंत्र होने के लिए। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति केवल सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई मुझे नियंत्रण नहीं करे। जब भी नियंत्रण में रहना पड़ता है हमें कष्ट होता है ना। ब्रह्मचारी बनते हैं हम लोग, जीवन समर्पण कर दिया भगवान को, लेकिन जब अथॉरिटीज कुछ कहती तो बड़ा बुरा लगता है, ऐसे कैसे कह दिया, मेरी इच्छा नहीं है मुझे। जहां मेरी इच्छा मतलब स्वतंत्रता। गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमें लगता बस हम अपना कमा रहे, अपना जीवन चला रहे, किसी का सुनना नहीं है, स्वतंत्रता की भावना। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन क्या है, जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे नाम के आगे दास या दासी लगाया जाता है। क्यों? केवल नाम के लिए नहीं, ये बतलाने के लिए कि अब हम अधीन हैं कृष्ण के भक्तों के, अपने अधिकारियों के। सुखी व्यक्ति भक्ति में वो है जो इस चीज को स्वीकार करके जीवन चलाता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसी को समर्पण कहते हैं। हम लोग जब बात करते हैं कि कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, उसका अर्थ केवल ये नहीं है कि जपमाला लेकर जप करना या कीर्तन कर लेना या फिर थोड़ा बहुत प्रचार कर लेना, ये तो एक अंग है, लेकिन सच्चा समर्पण है अपनी स्वतंत्रता को त्याग देना। भगवान की सेवा वो नहीं करना जो हमें पसंद है, भगवान की सेवा वो करना जो हमें अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। इसमें सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा से किसी सेवा को करते हैं इसका अर्थ हम भौतिक सुख ढूंढ रहे हैं। मुझे ये सेवा अच्छी लगती है इसीलिए मैं कर रहा हूं, भौतिक सुख की कामना। लेकिन मुझे भले ये सेवा अच्छी लगे या ना लगे, मुझे अधिकारियों के द्वारा दी गई है, कृष्ण की इच्छा है, हृदय से करूंगा इस सेवा को, ये भक्ति है। तो इसीलिए स्वतंत्र नहीं है श्लोक में समझाया जा रहा। स्वतंत्रता की भावना को त्यागिए, हर भक्त को यह स्वीकार करना चाहिए। और यह बड़ा कठिन है, स्वतंत्र भाव को त्यागना बड़ा कठिन है। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई परतंत्र कोई अधीन नहीं रहना चाहते, और यही हमारा कष्ट है। आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति अधीन रहना चाहता है, और अधीन रहने में आनंद है, स्वतंत्र रहने में इस जगत में आनंद नहीं है, इसको जान लीजिए। जैसे एक भौतिक उदाहरण दे दें, एक बहुत बड़ा व्यक्ति कोई कंपनी चला रहा है, अब उसको कंपनी चलाने में बहुत सरदर्द लेना पड़ता है, कितना उसका जो उसने बनाया माल वो बिका कि नहीं बिका, उसका कितना धन आया, लोगों को उसने सैलरी देनी है वो दी कि नहीं दी, बहुत सारी चिंताएं, लोगों से पैसा आया कि नहीं। लेकिन जो उसके अधीन काम करता है उसको कोई चिंता नहीं, महीने की एक तारीख को जाता है उसको पैसा मिल जाता, तो उसको वो चिंता नहीं कि उसको पैसा मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अधीन है, वो मालिक नहीं है। लेकिन जो मालिक है वो सारी चिंताओं को लेगा। इस जगत में ऐसा ही है, जब हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं तो केवल चिंताओं को अपने इर्द गिर्द लेते, जब अधीन बन जाते हैं तो फिर मालिक देखें, कृष्ण देखें, जैसा होगा वो होगा। तो ये भाव चाहिए कि फिर वो कृष्ण देखेंगे। तो ऐसे ये भाव में हमें स्वतंत्रता के भाव को त्यागना चाहिए कि हम स्वतंत्र ना रहें। भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। जब तक अपने भाव को बनाए रखेंगे, अपनी इच्छाओं को बनाए रखेंगे, अपने हिसाब से भक्ति करेंगे, जैसा मैं चाहता हूं, परंपरा के अनुसार नहीं, भगवद गीता के अनुसार नहीं, आचार्यों के अनुसार नहीं, अधिकारियों के अनुसार नहीं, हमेशा दुखी रहेंगे। यही भक्ति हमें दुख देगी, बोझा बन जाएगी ये भक्ति। लेकिन वही अगर स्वतंत्रता को त्याग दे कि हम तो अधीन हैं, जो कहा जाए बस उसको कर रहे हैं, बहुत सुखी रहेंगे। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि यही सिखाते हैं राजा चित्रकेतु को कि ये मत सोचो कि ये तुम्हारे पुत्र हैं, तुमसे तुम्हारे कारण उत्पन्न हुए, ये तो भगवान की इच्छा से होता है। तो इस चीज को वो कहते हैं कि कोई प्रयास करता है फिर भी नहीं हो पाता। और फिर वो कहते हैं कि मान लीजिए राजा चित्रकेतु कहें कि ठीक है आप कह रहे हैं सब भगवान, लेकिन ये तो सब जो मेरा है कुछ समय तो मेरे पास है, उस समय के लिए क्या करना चाहिए? तो वो समझाते हैं कि जान लो जितनी स्थिति है, तुम्हारा महल, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे इत्यादि, ये सब अशाश्वत है, थोड़े समय के लिए हैं और ये सब चले जाने वाले हैं। इस भाव में रहना चाहिए कि हम यहां हैं थोड़े समय के लिए, थोड़े समय में चले जाने, जीवन बड़ा थोड़ा है। जैसे हम पहले भी एक बार बता रहे थे कि एक बार एक महिला बस में बैठी थी, दूसरी एक महिला आई, बहुत मोटी सी, उसने धक्का मारा, उसके ऊपर सारा सामान रख दिया, वो महिला ने कुछ नहीं कहा। तो दूसरी एक बूढ़ा व्यक्ति था वहां, उसको गुस्सा आ गया, उसने इस महिला से पूछा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? अरे वो इतनी जोर से आकर सारा सीट उसने कवर कर लिया, आपको बैठने की जगह भी नहीं दे रहे, सामान आपके ऊपर रख दिया। तो उस महिला ने कहा कि मुझे अगले स्टॉप पर उतर जाना है, थोड़ा सा समय है, उसके लिए क्यों इतना झगड़ा करना उससे, ठीक है उसने कर दिया, अभी अगले स्टॉप पर उतर जाना है। बहुत सुंदर संदेश है हमारे लिए इस कथा में। अगर हम लोग भी ये जाने कि हमें बस अगले स्टॉप पर उतरना है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत लंबी जर्नी नहीं है हमारी, अगले स्टॉप पर उतरना है, तो फिर कोई धक्का मारे अर्थात कोई अपमान करे, कोई बहुत कुछ सामान आपके ऊपर रख दे अर्थात आपको कोई बोझा दे दे, हमने ठीक है अगले स्टॉप पर उतरना है, क्यों उसके लिए झगड़ा करना। ऐसा होता है ना, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो कभी कभी कोई हमारी सीट पर बैठा है तो बड़ा झगड़ा होता है, उठो यहां से हमारी सीट है ये। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आता है उसके बाद वो सीट किसकी है, उसके बाद अगर आपको उस पर बैठना भी है तो आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं थोड़े 5 मिनट के लिए, वही सीट। ये हमारा जीवन है, अगर हम इस भाव में रहें कि सब कुछ थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमारी गलती यही, हम परमानेंट मान लेते हैं, शाश्वत मान लेते हैं। विवाह करते हैं लोग बोलते 7 जन्मों का बंधन है, 1 जन्म का तो पता नहीं, 7 जन्मों की बात करते हैं। तो हम लोग चीजों को शाश्वत मान लेते हैं कि बस ये कभी जाएगी ही नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा धन कभी जाएगा नहीं, मुझे कभी रोग आएगा नहीं, और जब आता है तो हम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो इस भाव में रहना है कि अगले स्टॉप पर उतरना है हमें, क्यों चिंता करना, कितना जीवन है हमारा, और उसमें हम लोग एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति क्रोध को प्रकट करते रहें, इसको मैं दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसे कर, लोग कहते ना जीवन भर याद रखते हैं किसी ने कुछ थोड़ा सा कर दिया उसको जीवन भर 20 साल बाद भी ने ऐसा किया था, अरे मर जाता है क्या रहता है। और जब मरता है तब हम लोग शोक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, आपको पता है अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आपके हृदय में आता है मैंने अच्छा नहीं किया, बेचारा मर गया, क्षमा तो मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद क्या है। तो इसीलिए ये चीज को जान लीजिए कि सारी स्थितियां ये थोड़े समय के लिए, तो इस भाव में अगर हम रहें तो क्या हम लोग कभी दुखी रहेंगे? कोई कष्ट है कि थोड़े समय के लिए झेल लो, चला जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज कहते जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा, कोई रोक नहीं सकता, कर्मों के अनुसार सब होता। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो मानो प्रश्न आया हो कि ये जो आप बात कर रहे हो कि हमें चले जाना, ये हम कौन हैं? तो तब वो कहते हैं कि इस शरीर में जो आत्मा है वो शाश्वत है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है भगवान की शक्ति जिसको निम्न शक्ति कहा जाता है और एक परह या ऊंची शक्ति है। तो निम्न शक्ति है ये भौतिक जगत, भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की निम्न शक्ति मानी गई। लेकिन भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, कि इस व्यक्त और अव्यक्त होने वाले जगत के परे एक सनातन जगत है, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या ऊंचे स्तर की शक्ति, और जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में आता है, जीव भौतिक नहीं है। तो इसीलिए जीव ये शाश्वत है, सदैव बना रहता है, तो इसको वो लोग वर्णन करते हैं कि जीव शाश्वत है और सदैव बना रहता है। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया महाराज चित्रकेतु को। तो ज्ञान का सार क्या है इन आठ श्लोकों में जो ज्ञान दे दिया कि ज्ञान का सार कि सबसे पहले शोक करना बंद करें, ये जानते हुए कि ये जो हमारे संबंध है ये शाश्वत नहीं है। दूसरे शब्दों में शाश्वत संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें। हमारा शाश्वत संबंध है श्री कृष्ण से, क्योंकि संबंध वो होना चाहिए जिसमें कोई कारण ना हो, ना हेतु ना हो, जिसमें समर्पण या त्याग की भावना बढ़े, जिसमें आशाएं ना हो, और ऐसा संबंध केवल श्री कृष्ण से हो सकता है। तो इसीलिए इन संबंधों की अशाश्वतता को जानते हुए सच्चे संबंध को स्थापित करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और उसको करने के लिए ये जानना चाहिए कि इस जगत में कोई स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जितनी स्थितियां हैं, चाहे वो देश हो, परिवार हो, समाज हो, वो सब अशाश्वत है, थोड़े समय के लिए। ये जीवन ही थोड़े समय के लिए है, इसीलिए इस जीवन में भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। तो जब इस सार को उन्होंने सुन लिया तो उनका शोक दूर हो गया। उन्होंने सोचा ये लोग कौन हैं? अर्थ ये था कि अंगीरा मुनि और नारद मुनि जैसे उनका रूप है वैसे नहीं आए थे, वेश बदल कर आए थे। तो पूछने लगे, जब उन्होंने सुना तो महाराज चित्रकेतु पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं? ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं ये ज्ञान कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप निश्चित भगवान के भक्त होंगे। और कई नाम उन्होंने लिए, सनत कुमारों से प्रारंभ करके नारद मुनि का भी, कि ये जो लोग हैं ये सारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और आप भी मेरे पास आए हैं केवल इसी कारण से, मेरा उद्धार करने के लिए। और फिर वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो एक गांव के पशु की तरह हूं। पशु मतलब जैसे गांव में कुत्ता इत्यादि होता है, कोई ज्ञान नहीं, उसको पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं तो एक पशु हूं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं सही चीज को जान सकूं। प्रभुपाद लिखते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है नम्रता। अपने आप को गुरु के समक्ष बड़े नम्र भाव में प्रकट करना कि आप बता सकते, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। तो ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मैं तो बहुत मूर्ख हूं, मुझे बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब गुरु के पास जाते हैं तो खुद ही कहते हैं मैं तो मूर्ख हूं, कुछ जानता नहीं, मेरे गुरु ने कहा महामंत्र लो, मैं महामंत्र ले रहा हूं, बस मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो जब भी गुरु के समक्ष जाएं तो हमें इस भाव में जाना चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं, नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं। चाहे वो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ हो, ज्ञान लेना है तो उसको श्रेष्ठ मानना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम कहते हैं तो व्यासदेव नारद मुनि बैठकर सुनते हैं, क्या आवश्यकता है? वो तो कह सकते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, हमने इसे सिखाया है। नारद मुनि ने व्यासदेव को सिखाया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, और जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो नारद मुनि बैठकर सुन रहे हैं, व्यासदेव बैठकर सुन रहे हैं। क्यों? तो उस समय जब सुना जाता है तो सुनाने वाले को श्रेष्ठ पद दिया जाता है, मतलब नारद मुनि और व्यासदेव ने उनको श्रेष्ठ पद दिया, श्रेष्ठ माना, बैठकर सुना। इसलिए भाव ऐसा चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। भक्तों के समक्ष इस भाव में जाना चाहिए। जहां हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, जहां हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ी अच्छी तरह से कार्य कर सकता हूं, तब फिर भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं आगे वो बताते हैं। अंगीरा मुनि जब प्रश्न कर लिया कि आप कौन हैं, बहुत से नाम भी गिनाए, सनत कुमार, असत, असित, देवल इत्यादि, ये सब लोग घूमते हैं, आप उनमें से कोई होंगे। तो उस समय अंगिरा मुनि ने कहा कि, फिर अपना परिचय दिया कि मैं अंगिरा ऋषि हूँ और ये नारद मुनि हैं, और मैं तुम्हारे पास उस समय आया था, मैं चाहता तो ये ज्ञान उस समय भी तुम्हें दे सकता था। प्रश्न आता है ना कि जब पहले आए थे तब ये ज्ञान क्यों नहीं दिया, तभी समझा देते, राजा इतना रो रहा था कि पुत्र चाहिए तभी सिखा देते। तो उन्होंने कहा उस समय तुम तैयार नहीं थे ज्ञान लेने के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पुत्र की आसक्ति में थे, तुम डूबे हुए थे, बस पुत्र चाहिए, इसीलिए मैंने ज्ञान नहीं दिया, यही ज्ञान उस समय दे सकता था। तो ये चीज है कि गुरु जब देखते हैं कि ये तैयार है ज्ञान के लिए तब ज्ञान को देते हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं दिया जाता, अन्यथा दूसरी सेवाओं में लगाया जाता है, कार्य कराए जाते। जैसे उन्होंने कहा ठीक पुत्र लो, ये लो वगैरह, लेकिन अब तैयार हो गया, अब ज्ञान देना। तो ये मार्ग है, गुरु ये जानते हैं कि कब ज्ञान देना, सही समय पर दिया गया ज्ञान स्वीकार्य होता है। जैसे यही ज्ञान अगर चित्रकेतु को उस समय दिया होता जब वो पुत्र मांग रहा था तो वो स्वीकार नहीं करता, वो बोलते ये सब बेकार है, आप अपने पास रखो, मुझे पुत्र चाहिए बस। लेकिन आज जब उसको ये अनुभव हो गया और वही ज्ञान दिया जा रहा है, तब वो जान लेता कि हाँ सही है। इसको शमशान वैराग्य भी कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ा बहुत हम लोगों में होता है कि व्यक्ति शमशान जाता है, दूसरे को जलते हुए देखता है, तब लगता है हाँ एक दिन तो हमें भी जाना ही है, लेकिन बाहर आते ही भूल जाता है, बाहर आता उसको याद नहीं रहता कि एक दिन हमें जाना, बाहर आके फिर वही मोबाइल शुरू हो जाता है, चेक्स लिखना, पैसा, सब भूल जाता है। तो जब सही समय हो तो ज्ञान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ज्ञान दे सकता था लेकिन दिया नहीं। और महाराज चित्रकेतु, आप तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, और आपके लिए ऐसा शोक करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त न किसी स्थिति में शोक करते हैं न बहुत ज्यादा हर्षित होते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान के भक्त अगर किसी भी अवस्था में शोक नहीं करते, हर्षित नहीं होते तो क्या करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं वो केवल भगवान की सेवा करते हैं। और कैसी सेवा? नरोत्तम दास ठाकुर के एक भजन को कोट करते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म हुए अभिलाष। वो कहते हैं कि हमें अगर सेवा करनी चाहिए तो कैसे सेवा करनी चाहिए? एक शुद्ध भक्त की सेवा करनी है लेकिन भक्तों के संग में रहके। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, भक्तों के संग में की गई सेवा ये भगवान को प्रसन्न करती है। इसीलिए अर्थ क्या है, अकेले भी नहीं करनी चाहिए कि हम भक्त की सेवा अकेले करेंगे, उसमें भी अहंकार आ जाएगा। हनुमान जी जब सीता को ढूंढने के लिए कूदने लगे, लंका में जाने लगे, पर्वत पर पता चल गया कि सीता वहां है, जटायु के भाई आए, उन्होंने बता दिया कि वो सीता वहां है, जाओ देख कर आओ। अब हनुमान जी जा रहे हैं और निश्चित था कि हनुमान जी वापस आएंगे सीता के संदेश के साथ, लेकिन उस समय हनुमान जी ने सभी को कहा आप लोग जाना नहीं, आप सब खड़े रहिए यहीं पर। अंगद थे, जांबवंत थे, अन्य लोग थे, कहा यहीं खड़े रहिए, आप कहीं नहीं जाना, मैं जब तक वापस नहीं आऊं। क्यों? क्या हनुमान जी डर रहे थे कि अकेले कुछ हो जाएगा? नहीं, हनुमान जी ये श्रेय सबके साथ मिलकर बांटना चाहते थे कि हमारे दल ने सीता को ढूंढा है, हनुमान ने सीता को नहीं ढूंढा। अगर वो अकेले रह जाते, सब चले जाते और अकेले जाकर वो बताते रामचंद्र जी को कि मैंने सीता को ढूंढा है, तो अहंकार हो जाता। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, तो उन्होंने कहा सब लोग साथ में, और जब वापस आए तो सारा दल साथ में जाकर ये कहा कि हमने सीता को ढूंढ। तो हनुमान जी हमारे लिए आदर्श हैं कि हमें कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि अकेले हम कुछ कर लें, श्रेय सारे दल को मिलना चाहिए। भले व्यक्ति अकेला करे लेकिन उसका श्रेय, जैसे उदाहरण के लिए फुटबॉल का गेम होता है, उसमें लोग खेलते हैं, एक गोलकीपर होता है, फिर थोड़े पीछे खेलने वाले होते हैं, थोड़े बीच में खेलने वाले होते हैं और थोड़े आगे खेलने वाले होते हैं, बैक मिडल और फॉरवर्ड। गोल जो है वो केवल आगे खेलने वाला मारता, गोलकीपर जाकर गोल नहीं मारता है। लेकिन जब विजय होती है तो श्रेय सारी टीम को दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि जिसने गोल मारा वो जीत गया, नहीं, इंडिया जीत गई या ब्राजील जीत गया, जो भी टीम है, तो श्रेय सारी टीम को मिलता है। भले वो गोलकीपर खड़ा रहता पीछे, लेकिन श्रेय सारी टीम को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये टीम, अगर गोलकीपर खड़ा नहीं रहेगा तो दूसरे लोग आकर गोल मार देंगे, वो बचाएगा नहीं तो, तो वो अपना काम करता है। फिर जो पीछे वाले हैं वो अगर गेंद आगे लेकर नहीं जाएंगे तो आगे वाले को मिलेगी कैसे, है ना? जैसे हमने वो एक बार कहानी बताई थी कि फायर ब्रिगेड वाले थे तो आपस में उनका जमता नहीं था, तो फायर ब्रिगेड गई, अचानक फोन आया कि जल्दी से आग लगी है। तो ड्राइवर ने बोला, मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा तो ये लोग आग कहाँ से बुझाएंगे, ना गाड़ी चलाएगा तब तो आग बुझेगी जाके। चलो वो गाड़ी लेकर चला गया, तो वहां जब पहुंचा तो ऊपर सीढ़ी लगानी थी, और सीढ़ी लगाने वाला बोला, मैं सीढ़ी नहीं लगाऊंगा तो ये लोग ऊपर चढ़ के बुझाएंगे कैसे। खैर सीढ़ी लग गई, फिर वो व्यक्ति ऊपर चढ़ गया पाइप लेकर। अब जिसको नल खोलना है नीचे का, उसने कहा नल ही नहीं खोलूंगा, तो बुझा लो जितनी आग बुझानी है ऊपर जाकर, वो तो मेरे हाथ में है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब हरेक का अपना अपना कार्य है, अगर सब मिलकर करेंगे तो आग बुझेगी। इसी तरह ये भौतिक जगत में जो आग लगी हुई है, संसार दावा नल नीत लोका, अगर इस अग्नि से हमें बचना है तो एक साथ भक्त सनेवास, अकेले नहीं। अकेले अगर गए तो पीछे से नल नहीं खोला तो हम लोग खड़े रहेंगे, अग्नि में जल जाएंगे। सीढ़ी नहीं होगी तो ऊपर कहां से जाएंगे, गाड़ी चलाएगा नहीं तो पहुंचेंगे कहां से। तो इसीलिए हमें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद लिखते, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, एक शुद्ध भक्त की सेवा, जैसे हम सब श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं इस आंदोलन में, लेकिन भक्त सनिवास, एक साथ मिलकर करना चाहिए। कभी भी खुद को श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बांटना चाहिए श्रेय। और ये जान लीजिए कि खुद लेने में और बांटने में जो आनंद है, बांटने का आनंद ज्यादा बड़ा है। जब श्रेय को बांटा जाता है तब ज्यादा आनंद आता है। हालांकि जो लोग भौतिक चेतना में है उन्हें खुद श्रेय लेने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बांटना चाहिए। तो इस तरह ये श्रेय हमें सबको देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेले भगवान की सेवा नहीं, सभी भक्तों, जैसे अभी हम लोगों ने इतना बड़ा उत्सव किया, क्या कोई एक व्यक्ति अकेला कर सकता था इस उत्सव को? कोई नहीं। बहुत सारे चीज, अलग अलग विभाग, अलग अलग लोग सेवा कर रहे हैं, वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा उत्सव हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता मैं अकेले ही करूंगा, हाँ तो क्या कर लेता था? स्टेज वाले स्टेज ही नहीं लगाते, रथ वाले रथ नहीं सजाते, और धन इकट्ठा करने वाले धन इकट्ठा नहीं करते, बहुत सारी चीजें, तो क्या उत्सव हो जाता? तो कौन व्यक्ति कह सकता है कि मेरे अकेले के बल पर ये उत्सव हो गया? बिल्कुल नहीं। सबका मिलकर होता है, श्रेय सबको जाता है कि सब लोग ये कहें कि हाँ कारवार में सुंदर उत्सव हुआ, बस इतना ठीक है। तो इस तरह से हमें ये भाव में रहना चाहिए। तो इसको वो सिखाने लगे कि भक्त को ये कार्य करना, आप तो भक्त हैं, आप क्यों शोक कर रहे हैं? आपको शोक नहीं करना चाहिए इस तरह से। और फिर वो आगे समझाते हैं कि इस जगत में जितनी भी चीजें अशाश्वत हैं, देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसंयस्य सतस्वपी, एक स्थान पर कहा गया ये कि जितना भी हमारी चीजें हैं, देह पुत्र इत्यादि, इनको हम अपना सैनिक मानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये सब अशाश्वत जाने वाले। तो ऐसी बातें उनको बताकर वो कहते हैं कि आप प्रयास करो ये समझने का कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो और कहां जाने वाले। इतनी चीजों को समझने का प्रयास करो महाराज चित्रकेतु, ये सब भूल जाओ, ये मेरा लड़का, ये मेरी पत्नी। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले चित्रकेतु के बहुत सारी पत्नियां थी, उसने प्रयास कर लिया, पुत्र नहीं हुआ। तो सब कुछ भगवान की योजना से होता है, आप भी भगवान के द्वारा नियंत्रित हो। इसीलिए हे चित्रकेतु महाराज, आप ये जानने का प्रयास करो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओ। और फिर नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूं, पिछले पूर्व काल में इसी मंत्र को जप कर बड़े बड़े भक्तों ने भगवान संकर्षण की आराधना की, और मैं ये मंत्र तुम्हें देता हूं, इस मंत्र का जप करने से 7 दिनों के अंदर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा आशीर्वाद देकर नारद मुनि और अंगिरा मुनि ने उनको ये ज्ञान प्रदान किया। और अब अगले अध्याय में यही वर्णन कि इस ज्ञान का क्या प्रभाव हुआ, और उनका जो मृत पुत्र था उसको पुनर्जीवित करके फिर से ज्ञान दिया गया, और कैसे महाराज चित्रकेतु की भेंट भगवान से हुई, ये अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? स्वतंत्रता त्याग करने के बारे में विस्तार से, स्वतंत्रता त्याग करने के मार्ग हैं गुरु के आदेशों का पालन करना, सबसे पहला चीज। अपने आप को केवल नाम मात्र के लिए दास नहीं मानना, उस भाव में आना। तो जो भी हमसे कहा जाए उसको करने का प्रयास करना। दूसरी चीज, शास्त्रों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करना। जैसी भावनाएं, जो चीज़ें भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों से हमें बताई जाती हैं, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना, अपने मन से नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता, शुरुआत में थोड़ा बहुत स्वतंत्रता ठीक है व्यक्ति को, जब तक ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति पूर्ण रूप से परतंत्र हो जाता है। सच्ची मुक्ति इस जगत की स्वतंत्रता में नहीं है, सच्ची मुक्ति अपनी स्वतंत्रता को त्याग देने में है। जब तक हम स्वतंत्रता को बनाए रखें, स्वतंत्रता क्या है इस जगत की? भगवान से परे रहना। इस जगत की स्वतंत्रता का परिभाषा इतना ही है। जो भी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानता है, मतलब वो भगवान से दूर है। तो जब तक हमें वो भाव बना हुआ है, हम पूर्णता को कैसे प्राप्त करेंगे? सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए स्वतंत्रता को त्यागना बहुत आवश्यक है। तो स्वतंत्रता क्या है? अपने मन से कार्य करना, आचार्यों की वाणी को नहीं सुनना, शास्त्रों के ऊपर ध्यान नहीं देना, और इवन भक्ति में आकर भी अपने मन से भक्ति करने का प्रयास करना। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आप हरि की भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हो, तो फिर वो केवल उत्पात उत्पन्न करती है। तो भक्ति में आकर भी अगर स्वतंत्रता को बनाए रखना, तो केवल उत्पात के कार्य। तो स्वतंत्रता त्यागने के लिए किसी भक्त के अधीन रहना आवश्यक है। अपने जीवन के हर निर्णय उनसे पूछ कर करना, अपने जीवन में हर सेवा हम किसी के अधीन रहकर करना, और हमेशा इस भाव में रहना कि मेरा जीवन तभी सफल हो पाएगा जब मैं भक्तों के दास के दास के दास के दास के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊँ। तो इसलिए दास दास दासानुदास ये बनना, स्वतंत्रता को त्यागना अनिवार्य है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? भक्ति में आने से पहले जब हमारे अंदर ये भावनाएं रहती हैं, तो हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमें स्वभाव अपने पूर्व कर्म के फलों के अनुसार मिलता है। भक्ति में आने के बाद अगर ये भावनाएं बनी हुई हैं, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, और हमारी साधना उतनी तीव्रता से हम नहीं कर रहे हैं श्रद्धा की कमी के कारण। क्योंकि चाहे हमारा कोई भी स्वभाव क्यों ना हो, क्रोध हो, काम वासना हो, शोक हो, हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि उसको निकाल सकता है, लेकिन वो श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है और हम श्रद्धा से उस नाम को नहीं ले रहे हैं या हमारी साधना में हमारी कोई कमजोरी है, तो फिर वो स्वभाव उभर कर आते रहते हैं। तो हमें अपने स्वभावों को कम करने के लिए, जो स्वभाव है उसको खत्म करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार उस स्वभाव को जैसे हमें बना कर दिया गया है ना, इनबिल्ट हमारे अंदर आ गया है, तो हमें कैसे उसको समाप्त करना है, इसके लिए पहली चीज़ बड़ी तीव्रता से हमें साधना करनी चाहिए, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि यही नाम मुझे बचा सकता है बस। अगर ये श्रद्धा है तो निश्चित कार्य होगा। दूसरी चीज़, हमें हमेशा भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, दादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो तुमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, इस भाव में रहना चाहिए, तब ये जो भावनाएं हैं वो जाएंगी, जो भाव हैं। और दूसरी चित्त, ये पहली चीज कि आप साधना अच्छी करें, जपा को बहुत ध्यान श्रद्धा के साथ, दूसरा भक्तों से बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से, तीसरा भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान चाहें तो एक क्षण में आपके स्वभाव को बदल सकते हैं, उनको देर नहीं लगेगी कि आपके जन्मों जन्मों के कर्मों को फलों को मिटाने में। तो भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करें कि किसी तरह मेरे इस, मैं नहीं चाहता हूँ इसको, लेकिन ये मेरे अंदर बना हुआ है, आप कृपा कीजिए तो ये स्वभाव बदल जाए। तो जब भगवान की कृपा होगी निश्चित स्वभाव को बदल सकते हैं। तो इसीलिए साधना में बड़ी गंभीरता लाएं, श्रद्धा लाएं, सबसे पहली चीज़। हमें श्रद्धा नहीं है कि ये नाम सब कुछ कर सकता है, हम नाम लेते हैं, 16 माला जप करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं कि बस यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो श्रद्धा को उत्पन्न करें। श्रद्धा उत्पन्न होगी कि जब हम जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए तात्पर्यों को समझने का प्रयास करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी। लोगों में श्रद्धा बढ़ी तभी तो जीवन समर्पण किया लोगों ने, नहीं तो क्यों कोई जीवन अपना समर्पण करेगा, क्यों कोई ब्रह्मचारी सन्यासी बनेगा। श्रद्धा बढ़ी कि हाँ, ये जीवन लेने से मुझे लाभ होगा, मुझे यही जीवन की पूर्णता मिलेगी। तो इसीलिए श्रद्धा को बढ़ाएं, और श्रद्धा बढ़ाएं, भक्तों से प्रार्थनाएं करें, उनकी कृपा याचना करें, भगवान की कृपा याचना करें। और चौथी चीज, प्रयास करें कि जो भी हमें सेवा प्राप्त हो उसको कृतज्ञता के भाव में करें। जैसे हमें जो सेवा मिले उसको बोझ मान कर नहीं, बड़ी कृतज्ञता से कि ये सेवा मुझे मिल गई है, अब मुझे किसी तरह इसको बहुत अच्छा करना है, पता नहीं कल मुझे ये सेवा मिले या ना मिले। कृतज्ञता का भाव चाहिए। हमारे अंदर से कृतज्ञता का भाव निकल गया है क्योंकि हमने बाहर जो भी कार्य करते हैं, हम लोग भौतिक कार्य, वहाँ पर कोई कृतज्ञता नहीं। आप जॉब करते हो, कोई कृतज्ञता नहीं है आपको, उल्टा आपको लगता है कि इतना काम करता हूँ मुझे पैसे कम देते हैं, ये कृतज्ञता का भाव नहीं है वहाँ पर। तो ये कार्य कर करके हमारी चेतना पर बाहरी, इसीलिए कहा गया है ना कि चपल सुख लबलाबी रे कृपण दुर्जन, कृपण और दुर्जन लोगों की सेवा कर रहे हैं चपल सुख के लिए, तो सारी वो श्रद्धा कृतज्ञता चली गई। कोई कृतज्ञ नहीं है किसी के पास भी काम करने वाला, वो ये नहीं मानता कि रोज नहीं कहता कि आपकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, वो तो कहता है मेरा तो परिवार और होना चाहिए था, देता नहीं है पैसा इत्यादि। तो इस कारण से, मगर उस भाव को यहाँ नहीं लाना। जब हम सेवा करें तो यहाँ हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि आज मुझे कितने कृतज्ञ हूँ कि मुझे सेवा मिली, भगवान की मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो ऐसे भाव में जब हम सेवा करें तो ये चार चीज़ें आप करें, निश्चित स्वभाव चेंज होगा। श्रद्धा से जप करें, पूर्ण श्रद्धा से, भक्तों से प्रार्थना करें, कृपा याचना करें, भगवान से बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करें उनके समक्ष खड़े होकर, और कृतज्ञता के भाव में सेवा करें, निश्चित स्वभाव चेंज होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? यस, yes. स्वतंत्रता और स्वाभिमान में क्या अंतर होता है? स्वाभिमान और स्वतंत्रता इस जगत में जब तक स्व शब्द को ठीक से नहीं समझते हैं तब तक वो दोनों बंधन का कारण होते हैं। सच्चा स्वाभिमान क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सच्चा स्वाभिमान है। स्व को अभिमान, तो स्व को जब हम शरीर मानते हैं तो जब स्व को शरीर मानते हुए हम इस पर अभिमान करते हैं तो वो बंधन का कारण है। लेकिन वही जब हम स्व को आत्मा मानते हैं और उसको भगवान के दास के रूप में स्वीकार करते हैं वो सच्चा स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान जब हमें ये हो जाता है तब स्वाभिमान स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम गलत स्वाभिमान में हैं अर्थात अपने आप को शरीर मानते हुए अपने ऊपर अहंकार करते हैं कि ये शरीर बहुत अच्छा इत्यादि, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, तो वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं परतंत्रता की ओर ले जाता है। लेकिन सच्चा स्वाभिमान सच्ची स्वतंत्रता को प्रदान करता है। तो स्वाभिमान का अर्थ है अपनी स्थिति को जानना, सच्ची स्थिति को जानना, और स्वतंत्रता का अर्थ है उस स्थिति के अनुसार आचरण करना, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता ये नहीं है कि हमें मन में जो आए वो करें, वो तो अज्ञान है, मूर्खता है। सच्ची स्वतंत्रता है हम अपनी स्थिति को जानते हुए उसके अनुसार कार्य करें। तो स्वाभिमान मतलब अपनी स्थिति को जानना, स्वतंत्रता मतलब उसके अनुसार कार्य करना। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नेताय गौर प्रेमानंदी।